हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रांत और वसुंधरा में बहस चल रही थी, क्योंकि विक्रांत ने उसे कैद कर रखा है, जहां पर वो उसे कुछ कम इधर उधर चलने के अलावा और वहां से कहीं भी जाने नहीं देता है। और अभी काफी देर के बाद वो उसे देखने के लिए आया था कि वो वहां पर है और ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन इसी बीच वसुंधरा ने उसके ऊपर चिल्लाया। विक्रांत को इस तरह से किसी का भी चिल्लाना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वसुंधरा की बातें समय और वो उसकी बात का जवाब दे ही रहा था कि तभी इस वक्त उसे जगह पर हमला हुआ जहां पर उसने वसुंधरा को कैद करके रखा था। वसुंधरा को ऐसा लगा कि जैसे ये सब विक्रांत उसकी जान लेने के लिए कर रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा था ये विक्रांत को भी नहीं पता। वही देखने के लिए वो वहां से बाहर निकल गया। वो जगह अभी भी बहुत बुरी तरह से हिल रही है, लेकिन वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा वहां पर क्या हुआ और वो कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए वो एकदम एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसने सारी जगह पर देखा, उसे छत पर दरारें पड़ती हुई सी नजर आई और उसके बीच में से धूल मिट्टी वहां पर कमरे में गिरने लगी, लेकिन उनमें से कुछ भी सीधे वसुंधरा के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि वो जिस घेरे में कैद थी सब कुछ उसके बाहर ही गिर रहा था। इसलिए सब वसुंधरा ने जब आसपास देखा तो उसे इतनी तो तसल्ली हो गई कि वो वहां पर सुरक्षित है और उसे शायद कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अलावा वसुंधरा को कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरी तरफ बाहर विक्रांत बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से बाहर निकल कर आया, क्योंकि उसे अब तक इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई तो उसका दुश्मन है जो इस तरह से उसे पर हमला कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से बाहर आया और उसने इधर उधर देखा। उसे अपने सामने हवा में तैरती हुई एक खुले बालों वाली चुड़ैल नजर आई, जो कि दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। और विक्रांत ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो एकदम ही गायब हो गई। और फिर विक्रांत को वहां पर एक सफेद रंग का प्रेत नजर आया, जिसके बाल भी पूरे सफेद थे। विक्रांत ने गुस्से में उसी तरफ से भी देखा, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आया। और इस तरह एक के बाद एक उसे अलग अलग लोग वहां चारों तरफ नजर आए, लेकिन वो किसी पर भी हमला कर पाता इससे पहले ही वो लोग गायब हो गए। और वहां पर तेज हंसने की एक आवाज गूंजी। क्या लगता है तुम्हें, तुम इतनी आसानी से सारी शक्तियां हासिल कर लोगे? नहीं, मेरे रहते तो कभी भी नहीं। इस तरह से शैतानी हंसी हंसते हुए वो आवाज आई। तो विक्रांत को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। उसकी आंखें गुस्से में उसे आज की तरह जलती हुई एकदम लाल हो गई और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जिससे कि चारों तरफ आग लग गई। वहां उस खंडहर नुमा महल जैसे दिखने वाले घर के चारों तरफ तेज और बहुत ही ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी, जिससे कि वहां पर आसपास के सूखे पेड़ पौधे और पेट भी जलने लगे। और उस घर की भी दीवारों तक आज की वो लपटें पहुंच रही है और धुआं भी निकल रहा है। आप बताओ, बहुत हंसी की आवाज भी एकदम ही गायब हो गई है और विक्रांत को अब हवा में डरती हुई कोई भी शैतानी शक्तियां, प्रेत, भूत, चुड़ैल, आत्मा कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं। विक्रांत ने तेज आवाज में उन सबको ललकारते हुए कहा, तुमने मेरी इजाजत के बिना यहां पर आने की हिम्मत की और सिर्फ आए नहीं, तुमने तो सीधा मुझ पर हमला ही कर दिया। इसलिए अब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम जो कोई भी हो, मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम विक्रांत के रास्ते में आओगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा है और उसका गुस्सा उन बढ़ती हुई आग की लपटों में साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा विक्रांत ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाया और हथेलियों को ऊपर की तरफ करते हुए उसने अपनी आंख बंद करके दोबारा से खोली और उसकी आंखों में वो आज की लपटें भी नजर आ रही हैं। विक्रांत वहां चारों तरफ नजर घुमाकर देखा हुआ अपनी जीत पर खुश हो रहा था, तभी फिर से उसके कानों में वही आवाज पड़ी, नहीं नहीं, मार सकते तुम मुझे इस तरह से इतनी आसानी से तो नहीं। मैं इस बार पूरी तैयारी से आया हूं और तुम्हारी आंखों के सामने से मैं राजकुमारी वसुंधरा को लेकर जाऊंगा। वो आवाज जिस तरफ से आ रही थी, विक्रांत ने तुरंत ही मुड़कर उस तरफ देखा तो उसे वहां उसे खंडहर के दरवाजे पास खड़ा हुआ एक शख्स नजर आया। और वो दरवाजे के अंदर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी पीठ ही विक्रांत को नजर आए। और अब तक वो वहां से अंदर चला गया तो उसके पीछे विक्रांत बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया, नहीं, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। और विक्रांत की आंखों के सामने से कोई उसके शिकार को ले जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और आज मैं तुम्हारा खेल खत्म करके रहूंगा, दैत्याराज। इतना बोलते हुए विक्रांत भी तुरंत उसके पीछे भागकर उस जगह के अंदर ही चला गया। दूसरी तरफ, यहां पर भी कोई भी नहीं है, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, बेवजह ही तुम हमें यहां पर लेकर आए और इन सब में बस हमारा समय बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं। बहुत ही निराशा होते हुए चंद्रिकाले मुंह बनाकर अपने पीछे देखते हुए कहा, जहां पर वीरेश अपनी कमर पर हाथ रखकर कुछ सोचता हुआ खड़ा था। वो सब एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़, छोटे बड़े नुकीले कल और गहरे रंग के पत्थरों से भरी हुई गुफा के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर सिर्फ एक तरफ से रोशनी आ रही है, क्योंकि उसे हिस्से का पत्थर कुछ हटा हुआ था और वहां से ही ये लोग अंदर आए, क्योंकि वीरेश को ऐसा लगा था कि हो सकता है विक्रांत ने ऐसी किसी जगह पर चंद्रिका को छुपा कर रखा हो। क्या देख रहे हो? अब तुम्हारे इस तरह से पूरी जगह को घर कर देखने से ये बदल नहीं जाएगी। ये वही खाली सुनसान जगह रहेगी जहां पर कोई भी नहीं है, और हमारा यहां पर आना पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। इसलिए चलो अब यहां से। इतना बोलते हुए चंद्रिका वहां से जाने के लिए वापस मुड़ी और समर उन दोनों के बीच ही खड़ा था। उसने चंद्रिका की बात सुनी, लेकिन फिर मुड़कर उसने वीरेश की तरफ भी देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि वो विक्रांत यहां पर होगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसी किसी जगह पर आया होगा, इसके बारे में तुम्हें पता हो? समर ने एकदम से ही ये बात बोली, तो उसके लिए बात सुनकर वीरेश ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा खुश होते हुए बोला, अरे वाह राजकुमार, क्या बात कही है आपने। देखने में तो आप बेवकूफ लगते हैं, लेकिन असल में है नहीं। मुझे समझ आ गया वो कहां पर हो सकता है। वीरेश इस तरह से खुश होते हुए ये बात बोला और तुरंत ही वहां से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ ही मुड़ गया। वहीं समर उसकी इस बात पर हैरानी से अपना मुंह खोले हुए सोचता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वीरेश ने उसकी तारीफ की है या फिर बुराई। इसकी हिम्मत कैसे हुई? हम राजकुमार और भावी राजा हैं। इस रक्षक को तो हम अभी बताते हैं कि खुद ही बेवकूफ है, जो इसके रहते भी महल से हमारी बहन गायब हो गए और अब ये ज्यादा होशियार बन रहा है। इतना बोलते हुए समर वहां से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक पत्थर पर उसका पैर पड़ा जो कि कुछ ज्यादा ही नुकीला था, और समर ने देखा नहीं, वो संभाल नहीं पाया और एकदम से लड़खड़ा कर वहां पर गिरा, और किनारे रखा हुआ दूसरा बड़ा सा पत्थर उसके सर में लग गया, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगा। सर पर वो तेज चोट लगते ही राजकुमार समर को बहुत ही तेज दर्द का एहसास हुआ और उनके मुंह से एकदम ही चीख निकली, आह आह, हमारा सर, वीरेश, चंद्रिका। दर्द से सीख निकलते साथ ही समर ने चंद्रिका और वीरेश का भी नाम लिया, जिससे कि वो दोनों पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर और समर बस इतना ही बोल पाया।
इसके आगे वो फिर से उन दोनों को बुला पाता, उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और भारी होते हुए उसकी आंखें एकदम गिरकर बंद हो गई। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? चंद्रिका ने अपने पीछे मुड़कर वहां पर खड़े हुए वीरेश से पूछा। आवाज? लेकिन कैसी आवाज? मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। शायद तुम्हारे ही कान बज रहे होंगे, वीरेश ने चंद्रिका की बात को एकदम ही लापरवाही से लेते हुए कहा। वीरेश का ऐसा मिजाज देखकर इसके आगे वो फिर से उन दोनों को बुला पता, उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और भारी होते हुए उसकी आंखें एकदम गिरकर बंद हो गई। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? चंद्रिका ने अपने पीछे मुड़कर वहां पर खड़े हुए वीरेश से पूछा। आवाज? लेकिन कैसी आवाज? मैंने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। शायद तुम्हारे ही कान बज रहे होंगे, वीरेश ने चंद्रिका की बात को एकदम ही लापरवाही से लेते हुए कहा। वीरेश का ऐसा मिजाज देखकर चंद्रिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने सच में अपने और वीरेश दोनों के नाम की आवाज सुनी थी। दूर से आई हुई एकदम धीमी आवाज उसके कान में बड़ी, इसीलिए इस बात को पक्का करने के लिए उसने वीरेश से भी ये बात पूछी, लेकिन वीरेश ने पर उतना ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा है। चंद्रक के बीच बना रक्षक दल आश्रम, वहां पर इस वक्त सारे छात्र अभ्यास कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए सब एक साथ ही टोली में बैठे हुए हैं। अपर्णा माँ, महात्मा गुरुजी और उनके साथ एक दो और शिक्षक को की जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षित और सारी कलाओं में परिपूर्ण बनाना। गुरुजी को वीरेश से कुछ काम था, इसलिए पिछले कुछ घंटे से वो 2 से 3 बार वीरेश को बुला चुके हैं और आश्रम में जो भी शिष्य उन्हें दिखा है उसे उन्होंने वीरेश को अपने पास भेजने के लिए कहा, लेकिन तभी एक शिष्य ने आकर बताया कि सुबह से वीरेश आश्रम में है ही नहीं। पिछली रात तक तो वो यहाँ पर था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। गुरुजी को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने आश्रम के सारे लोगों को बुलाकर एक लाइन से अपने सामने खड़ा किया, खासकर वीरेश के दोस्त और उसके दल के सदस्यों को। उन सब लोगों की तरफ देखते हुए गुरुजी ने सवाल किया, कहाँ है वीरेश? मैं आखिरी बार तुम सबसे पूछ रहा हूँ, और अगर किसी को भी पता है तो मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मुझे बताए बिना वो कहीं भी नहीं जाता है। वीरेश के सारे दोस्त वहां गुरुजी के सामने सिर लटकाकर खड़े हुए हैं और चुपके से एक दूसरे की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनमें से किस वीरेश के बारे में पता है और किसे नहीं।
शिवानी भी वहां पर उन सब के बीच थोड़ी डरी सहमी हुई सी खड़ी है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है वीरेश कब, कहां और किसके साथ गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये बात उसे गुरुजी और आश्रम में बाकी सबको बतानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वीरेश उसे ऐसा कुछ भी बोलकर नहीं गया। लेकिन वो गुरुजी से झूठ भी नहीं बोल पा रही और उसके बाकी साथियों को भी इस वजह से डांट सुननी पड़ रही है, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा है। सक्षम ने गुरुजी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर बाकी लोगों को पता हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे अभी आश्रम के लिए औषधियाँ लेने जंगल में जाना है, तो क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? गुरुजी ने एकदम गंभीर होकर मना करते हुए कहा, नहीं, कोई कहीं भी नहीं जाएगा जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता या फिर वीरेश वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसका इस तरह यहाँ से गायब होना बहुत ही बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि हमारे आश्रम पर कोई भी मुसीबत आए। क्या लगता है आप सबको, कौन है वो दैत्यराज जिसने विक्रांत पर हमला किया और उसका क्या मकसद है वसुंधरा के पीछे पड़ने का? और क्या हुआ है समर को, उसकी चोट गंभीर है और चंद्रिका वीरेश उसकी मदद के लिए वापस आएंगे या नहीं? और क्या महात्मा गुरुजी को पता चल पाएगा वीरेश कहाँ गया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए।